हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और जैसा कि आप में से जो नियमित रूप से आते हैं, आपको पता होगा कि प्रहलाद महाराज के चरित्र का ये आखिरी अध्याय है, भक्त शिरोमणि प्रहलाद। और इसके सातवें अध्याय के दसवें श्लोक का तेरहवां सातवें स्कंध के दसवें अध्याय का तेरहवां श्लोक आज है, जो बोर्ड पर लिखा है। तो आप हमारे पीछे पीछे दोहराइएगा।
भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय माम एष्यसि मुक्तबन्धा।
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद हमारे साथ साथ हो रहेगा। हे प्रहलाद, इस भौतिक जगत में रहते हुए तुम सुख का अनुभव करके अपने पुण्य कर्म से सारे फलों को समाप्त कर सकोगे और पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को विनष्ट कर दोगे। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना शरीर त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान उच्च लोकों तक में होगा। तुम बंधनों से मुक्त होकर भगवत धाम को लौट सकोगे। तात्पर्य कृपया सुनिएगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, एवं प्रहलाद संयोषेन साधन सिद्धत्वम नित्य सिद्धत्वम च नारद द्विजे गेयम। भक्तों की दो श्रेणियां होती हैं, साधन सिद्ध तथा नित्य सिद्ध। प्रहलाद महाराज मिश्रित सिद्ध हैं, अर्थात वे अंशतः भक्ति के कारण और अंशतः शाश्वत सिद्धि के कारण सिद्ध हैं। इनकी तुलना नारद जैसे भक्तों से की जाती है। विगत काल में नारद मुनि एक दासी पुत्र थे, किंतु अगले जन्म में भक्ति करने के कारण उन्होंने साधन सिद्ध प्राप्त की। इतने पर भी वे नित्य सिद्ध थे, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी नहीं भूलते। कुशलेन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भौतिक जगत में अत्यंत कौशल से रहना चाहिए। यह जगत द्वैत जगत कहलाता है, क्योंकि इसमें कभी पुण्य करना होता है तो कभी पाप। यद्यपि कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु यह संसार ऐसा बना है कि इसमें सदैव संकट बना रहता है। पदम पदम यथ विपदम। इस तरह भक्ति करते हुए भी भक्त के अनेक शत्रु बन जाते हैं। प्रहलाद महाराज को स्वयं इसका अनुभव हुआ, क्योंकि उनका पिता तक उनका शत्रु बन गया। भक्तों को चाहिए कि अत्यंत कौशल के साथ वे सदैव परमेश्वर का चिंतन करें, जिससे दुख उनका स्पर्श भी ना कर पाए। यह पाप पुण्य की कुशल व्यवस्था है। प्रहलाद महाराज जैसे उन्नत भक्त जीवन मुक्त होते हैं, अर्थात इसी जीवन में भौतिक शरीर से मुक्त रहते हैं। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का ये जो प्रसंग चल रहा है प्रहलाद महाराज का, ये बहुत ही रोचक प्रसंग है और बहुत ही इंस्ट्रक्शन से भरा हुआ है। जैसा कि ये पूरी कथा शुरू होती थी जब हुई थी, जब चार कुमार गए थे वैकुंठ लोक में और जय विजय को उन्होंने श्राप दिया। जय विजय को तीन असुरों के जन्म लेने पड़े, उनमें से एक जन्म था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का। और किस प्रकार से जब जो हिरण्यकश्यप थे उनके पुत्र प्रहलाद ने उनकी बात मानने के लिए मना किया तो उन्होंने बहुत यातनाएं दी और भगवान ने उनकी हमेशा रक्षा की। और किस प्रकार से रक्षा करते हुए एक दिन जब उन्होंने चैलेंज किया कि क्या आपके भगवान इस खंभे में हैं, तो प्रहलाद मुनि ने बोला हाँ इस खंभे में भी हैं। और खंभे को तोड़ने पर स्वयं नरसिंह देव उस खंभे से प्रकट हुए और नरसिंह देव ने उसके बाद हिरण्यकश्यप का वध किया। तो ये जो पूरा प्रसंग है, दरअसल जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं के पीछे बहुत कारण होते हैं। भगवान हमें सिखाना भी चाहते हैं कई चीजें और खुद भी रिलिश करना चाहते हैं पास्ट टाइम्स को, क्योंकि भगवान के अंदर जैसे इस कलयुग में भी आप देखते हैं कितने सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फाइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, है ना, WWF, WWE, तो उसमें कैसे लोग लड़ते हैं, तो लड़के ना वो आनंद लेते हैं। अब भगवान को अगर किसी से लड़ना है तो भगवान किससे लड़े, इस भौतिक संसार का कोई भी व्यक्ति कैपेबल नहीं है भगवान से लड़ने का। कृष्णा बुक में बताया गया है जब भगवान कंस से लड़ने के लिए उस मंच पर चढ़े थे मारने के लिए कंस को, तो सिर्फ कंस के अभी बाल पकड़े थे और उसने आधे प्राण त्याग दिए थे सिर्फ बाल पकड़ने से। तो भगवान के लिए बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, वो लड़ना चाहते हैं, कोई लड़ ही नहीं पाता ना? तो इसलिए भगवान अपने ही संगियों को चुनते हैं लड़ने के लिए साथ में, है ना। जैसे जामवन से जब आप भगवान लड़ाई कर रहे थे, कृष्णा बुक में आता है ये, जब जामवन से भगवान लड़ रहे थे तो 28 दिन तक युद्ध चला। 28 दिन के बाद जामवन को रियलाइज हुआ यार ये मेरे भगवान ही है, राम के अलावा मुझसे कोई इतना युद्ध नहीं कर सकता, मेरी शक्ति कम होती जा रही है और ये व्यक्ति नॉर्मल है बिल्कुल, है ना। तो जामवन ने तुरंत प्रणाम किया भगवान को और बोला कि आप मेरे भगवान राम हैं। भगवान तो कृष्ण बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं हूं, लड़ो, है ना, वो लड़ना चाहते थे। वहां पर 28 दिन तक युद्ध किया, है ना, हालांकि और कोई भी असुर, है ना, कृष्ण बुक में हम पढ़ते हैं कितने असुर थे, भगवान ने घुमाया, घुमाने मात्र से उसने प्राण त्याग दिए, अभी वो क्या लड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाएं करते हैं और लीलाएं करते हुए भगवान ने यहाँ पर प्रहलाद महाराज की रक्षा की। और प्रहलाद पिछले अध्याय में प्रहलाद महाराज ने भगवान की स्तुतियां की। तो दरअसल जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि ये जो पूरा संसार है, ये पूरा संसार द्वंद्वों से भरा हुआ है, ड्यूअलिटी से भरा हुआ है, सुख दुख सर्दी गर्मी, है ना, यश अपयश मान अपमान, है ना, यो न रिष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति समः शत्रौ च मित्र च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। तो पूरा का पूरा भौतिक संसार इन ड्यूअलिटी से भरा है, शत्रु मित्र, है ना। तो क्या है कि ये जो शत्रु मित्र, ये जो भी हमारे जो हमारा मानना है, ये दरअसल जो भी मानना होता है हमारे मन का है। हमारा मन आइडेंटिफाई करता है किसी को अपने मित्र के साथ और किसी को अपने शत्रु के साथ। दरअसल वो व्यक्ति ये फील नहीं कर रहा होता, ये सिर्फ मन फील कर रहा होता है। जैसे भगवत गीता में बताया गया इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेना भारता। तो क्या द्वंद है, ड्यूअलिटीज, मन फोर्स करता है मानने पे। जैसे अवंती ब्राह्मण से पूछा गया था कि आपके इस कंडीशन का कारण कौन है, अवंती ब्राह्मण ने क्या उत्तर दिया, ना कर्म है ना काल है ना कोई व्यक्ति है, ये मेरा अपना मन है जो मुझे ये मानने पे मजबूर कर रहा है कि ये आपका मित्र है ये आपका दुश्मन है, ना, इसने आपके साथ अच्छा किया इसने आपके साथ बुरा किया, ये मेरा अपना मन है। तो मन क्या है ये डिफ्रेंशिएट करने, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन क्या है, अगर वो किसी गद्दी पे बैठा है और उसके साथ कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हुआ है तो क्या मानता है उसको, ये मेरा दुश्मन है, और कोई उसकी हेल्प कर रहा है तो ये मेरा दोस्त है। दरअसल दोस्त उसका कोई भी नहीं है, दोनों ही दुश्मन ही है ना, क्योंकि किसके द्वारा बताए जा रहे हैं, वो मन के द्वारा डिक्टेटेड है, माइंड डिक्टेट कर रहा है कि ये अच्छा है ये बुरा है ना। जैसे कोई माता जी है, कोई स्त्री है अगर, तो उनको सजना अच्छा लगता है, अगर जो चीज उनकी मदद कर रही है सुंदर बनने में वो उनके लिए बहुत अच्छी है, और जो चीज मदद नहीं कर रही, जो उनका गुणगान नहीं कर रहा, वो बुरा है। अगर कोई कहे आप बहुत सुंदर हो तो वो बहुत अच्छा है, मित्र है। अगर कोई बोले आप सुंदर नहीं हो तो वो दुश्मन है। तो क्या ये सारी की सारी डिक्टेशन किसके थ्रू आती है? माइंड के थ्रू, ड्यूअलिटीज। तो ये मन हमें फोर्स करता है मानने के लिए, और ये मन हमें किसी भी एक्सट्रीम तक ले जाता है, किसी भी कंडीशन तक। जैसे एक बार दो डेथ के इंसिडेंट थे, कि एक बार एक व्यक्ति एक बहुत बड़ी रेफ्रिजरेटर कंपनी में काम करता था, तो जब रेफ्रिजरेटर के अंदर एंटर हुआ तो अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण लाइट्स ऑफ हो गई, और वो व्यक्ति बहुत बड़े फ्रिज के अंदर फंस गया। अब फ्रिज के अंदर फंसने से क्या हुआ, वो बहुत घबराने लगा क्योंकि अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी, और इसी घबराहट के कारण अगले दिन जब रेफ्रिजरेटर खोला गया तो उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो जब सर्वे हुआ कि किस कारण से इस व्यक्ति ने प्राण त्यागे हैं, तो पता लगा कि इस व्यक्ति ने प्राण केवल दहशत के कारण त्यागे हैं, क्योंकि जब लाइट्स ऑफ होती हैं तो रेफ्रिजरेटर में ऑक्सीजन सप्लाई अपने आप शुरू हो जाती है, केवल डर के कारण, है ना। मन डिक्टेट करता ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो उसको क्या है, उसने अपने आप उसमें एब्जॉर्ब कर लिया बिल्कुल। एक बार कुछ लेबर्स थे, वो कोल माइन में काम कर रहे थे, तो कोल माइन में काम करते क्या हुआ, विस्फोट हुआ और सारे के सारे ब्लॉक हो गए, बंद हो गए अंदर कोल माइन में। और जब वो ब्लॉक हुए कोल माइन के अंदर, तो जब उन्होंने बाहर से संपर्क किया मदद के लिए, तो उन्होंने बताया कि हम इतने डिस्टेंस पे हैं कि हमें मिनिमम 72 आवर्स लगेंगे, 72 घंटे लगेंगे पहुंचने में। तो जब ठीक है, उन्होंने बोला हम प्रतीक्षा करेंगे, तो उनमें से एक व्यक्ति के पास घड़ी थी, वो हर एक घंटे के बाद बताता था सबको कि 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। जब वो ऐसे हर घंटे के बाद बताता था, तो उसने क्या देखा कि सब लोग बहुत घबरा रहे हैं, बहुत नर्वस हो रहे हैं। उसने क्या किया, हर 2 घंटे के बाद बताता था कि 1 घंटा बीता है। तो अल्टीमेटली जब वो गुफा खुली जिसके अंदर वो फंस गए थे, तो सभी लोग जीवित थे केवल उस व्यक्ति के अलावा जिसके हाथ में घड़ी थी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को पता था कि 72 घंटे बीत चुके हैं, बाकियों को यह पता था कि अभी 36 घंटे हुए हैं, आधा टाइम चल रहा है। तो माइंड हमें किसी भी हद तक फोर्स करके कुछ भी कंक्लूड करने के लिए मजबूर कर सकता है, कुछ भी कंक्लूड करने के लिए। हमारे जो परम हितेशी परम मित्र हैं, वो साबित कर देगा कि आपके परम दुश्मन हैं, और जो सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके, ये साबित कर देगा कि आपके मित्र हैं। इसीलिए ही ये जो भौतिक संसार है, ये पूरा संसार, ये भौतिक संसार दरअसल एक सेफ प्लेस ही नहीं है रहने के लिए। भौतिक संसार की तुलना जैसे हमने सुना होगा उदाहरणों में, ऐसी है जैसे एक व्यक्ति के पीछे कोई शेर भाग रहा है, और उस शेर से डर के वो व्यक्ति कहां चढ़ जाता है, एक वृक्ष पे, कि मैं सेफ हूं। तो जब वृक्ष की टहनी पर बैठता है तो नीचे देखता है एक गड्ढा है, और वो गड्ढे में सांप भरे हुए हैं, और उसके बाद उसको थोड़ी सी आवाज सुनाई देती कट 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 की, है ना। जिस टहनी पर वो बैठा था उसको एक चूहा कुतर रहा होता है, और जब वो सर उठाकर ऊपर देखता है तो ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, और मधुमक्खियां घूम रही है, हर तरफ खतरा है ना, वो नीचे उतर सकता है, टहनी कभी भी टूट जाएगी, टूटेगी तो कहां गिरेगा, सीधा सांप के खड्डे में, है ना। और ऊपर अगर मधुमक्खियां अगर उत्साह में आ गई तो उसका वैसे ही बैंड बच जाएगा। तो हर तरफ खतरा है, तो उस स्थिति में भी वो क्या है, अपने आप को एक कंफर्टेबल सिचुएशन इस भौतिक संसार में, कंफर्टेबल इस ड्यूअलिटी के जगत में व्यक्ति कंफर्टेबल बनने की कोशिश करता है, है ना। अभी एक वो पेशावर में, पाकिस्तान में, कुछ बच्चों को स्कूल में खड़ा करके एक लाइन में 130 बच्चों को गोली से मार दिया, और जो टीचर्स थे उनको जला दिया, जिंदा जला दिया, है ना। तो कितना खतरा है, जैसे प्रभुपाद पर्पट ने बता रहे हैं, पदम पदम यत विपदम, हर पल पल पे खतरा है इस ड्यूअलिटी के जगत में, हर पल पल पे खतरा है, और हम क्या है, एक कंफर्टेबल लिविंग चाहते हैं, है ना। एक व्यक्ति इंजॉय करूंगा, है ना, आनंद लूंगा, ये भावना से जूमे गया, है ना, कि मैं देखूंगा शेर को, है ना, और क्या हुआ, देखते देखते नीचे गिर गया और वो शेर उसको खा गया। इंजॉय करूंगा, क्या इंजॉय कर सकता कोई, जर्नलिस्ट इंटरव्यू के लिए गए, उनकी गर्दन काट दी गई, क्या इंजॉय करेंगे। जगह जगह पर हम देखते हैं कहीं दंगे छिड़ गए, कई हजारों लोग मर जाते हैं, है ना, कहीं सुनामी आ गया, कहीं भूकंप आ गया, कितने लोग मर जाते हैं, हर पल पल पे खतरा है, हर पल पल पे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप घबराएंगे तो नहीं। अभी इस बिल्डिंग का हमने वो करवाया था आर्किटेक्ट से, तो उन्होंने बताया था कि बिल्डिंग इतनी कमजोर है कभी भी गिर सकती है। मजाक कर रहा हूँ, आप बैग मत पैक कीजिए अपने। तो हर पल पल पे इस भौतिक संसार में खतरा है, हर पल पल पे। और व्यक्ति क्या चाहता है, एक कंफर्टेबल लिविंग, है ना। पाकिस्तान ने 3 न्यूक्लियर मिसाइल न्यू दिल्ली के ऊपर तानी हुई है। युद्ध छिड़ते ही न्यू दिल्ली चले जाएगी और लोग सोचते हैं कि मैं एक कंफर्टेबल लिविंग यहां पर अपनी बना लूं, मैं अपना एक कंफर्टेबल यहां पर रहूं बढ़िया तरीके से, बड़ा मेरा बंगला हो, बड़ा मेरा आलिशान सब कुछ हो, कंफर्ट, अच्छी पढ़ाई करूं मैं, है ना। और क्या है, युद्ध छिड़ा और आप एक सेकंड में कोई नजर भी नहीं आना। तो क्या हर पल पल पे इतना खतरा है? और जब हम इन खतरों के बारे में सुनते हैं खासकर, तो हम सोचते हैं कि प्रभु जी तो निराशावादी हैं, कभी कोई काम की बात नहीं बोल सकते, कभी उत्साह भी तो बढ़ाया करो। तो ये निराशावादी नहीं है दरअसल, ये नेगेटिविटी नहीं है। अगर हमें कोई भी पॉजिटिव चीज करनी है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें किस अपनी आदत को बदलना है। अगर हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, है ना, मान लीजिए इस स्थान पर अगर हमें नई बिल्डिंग बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है उसको खत्म करना पड़ेगा, फिर नई बिल्डिंग होगी। अगर आपको अपना नया घर बनाना है जिस स्थान पर पहले ही आपका घर है, तो पहले पहले वाले को तोड़ना पड़ेगा, फिर नया घर बनेगा। अगर आप सोचे मैं उसी के ऊपर नया घर बनाऊंगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो क्या डीकंस्ट्रक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये जो भौतिक संसार है ये बिल्कुल खतरों से भरा हुआ है, और इस भौतिक संसार की हर स्थिति, हर पहलू हमें मजबूर करता है कि हम कृष्ण को भूल जाएं। हर पहलू, जो माइंड है, मन है हमारा इतना एक्सपर्ट है, जो सर्कमस्टांसेस हैं इतनी प्रोवोकिंग है कि आप कहीं जप नहीं कर सकते। अब आप वृंदावन बैठ के जप कीजिए, जैसे अभी हम वृंदावन गए थे तो सुरभि कुंज पे, गोवर्धन पे, सोचा था वृंदावन में ज्यादा शोर है, तो सुरभि कुंज पे जप कर रहे थे। तो जब करते करते क्या हुआ कि एक तरफ से भोंपू की आवाज शुरू हुई, है ना, वो उतने 6-in-1 बड़े बड़े, तो एक साइड से आ रही थी किसी गाने की आवाज, एक साइड से आ रही थी किसी भजन की आवाज, तो क्या जब होगा उसके बीच में। तो सारी सिचुएशन ऐसी है यहां पर, और माइंड फिर भी इतना एक्सपर्ट है, ये साबित कर देता है मन कि काश अगर ऐसा हो तो मैं खुश हो पाऊं, काश अगर मेरे जीवन में ये बदलाव आ जाए तो मैं ऐसा खुश हो पाऊं, काश अगर मुझे ये चीज मिल जाए तो मैं खुश हो पाऊं, है ना। आकाश पुष्पाए थे, ड्रीम्स, सपने देखता रहता है, सपने, निरंतर सपने देखता है, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, ये चीज मुझे खुशी दे देगी, वो चीज मुझे खुशी दे देगी, है ना। पर क्या ये जितनी भी चीजें हैं उसे कृष्ण से दूर लेके जा रही है। और हर पल पल ये जो हमारे विचारधारा भी है, हम क्या देखते हैं, ये विचारधारा हर पल बदलती है, किसी भी समय ये सेम नहीं रहती, हर मोमेंट टू मोमेंट ये चेंज हो रही है विचारधारा। अभी ये है, थोड़े समय में चेंज हो जाएगी, तीसरे समय में फिर कुछ और आ जाएगी। तो ये जो माइंड है, जो मन है, ये हमें ऐसी एक कंफर्टेबल सिचुएशन में ले जाता है कि व्यक्ति को लगता है कि कोई खतरा नहीं है, पर दरअसल सबसे बड़े खतरे में चल रहा होता है। भक्ति बहुत बढ़िया चल रही है, 16 माला हो रही है, 4 नियमों का सत्य समालन हो रहा है, तो व्यक्ति क्या है, रिलैक्स मोड में आ जाता है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। और माइंड क्या करता है, उसी चीज का फायदा उठा के हमें ड्रैग करता है, नीचे खींचता है। जैसे अभी ये नया एक्सप्रेस वे बना है, यमुना एक्सप्रेस वे, है ना, तो इस पर इतने एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, व्यक्ति कंफर्टेबल होता है, इतना एकदम कंफर्टेबल, कोई खतरे वाली बात नहीं, स्मूथ गाड़ी चल रही है, 150-160 की स्पीड में भी आपको लगता है कि चलाना भाई, चला क्यों नहीं रहा है, कंफर्टेबल। और उस कंफर्टेबल के चक्कर में क्या होता है, दुर्घटना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जहां सावधानी हटती है, जहां हल्के से भी डेविएट हुए, वहां पर क्या है, 100% चांसेस है दुर्घटना की। जब हम कंफर्टेबल होते हैं, रिलैक्स मोड में होते हैं, क्या है, सो जाते हैं। तो ये जो माया है, मन है, ये हमें हमेशा भ्रमित करता रहता है, हमेशा, है ना। और इसकी ट्रिक्स को समझना बहुत मुश्किल है। जैसे एक बार एक व्यक्ति बता रहे थे कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पर एक व्यक्ति साइकिल के पीछे एक बोरी भर कर लेके जा रहा था, तो चेकिंग करने वालों ने पकड़ा, बोला क्या है इसके अंदर, उसने बोला कुछ नहीं, इसके अंदर मिट्टी है बोरी में, कह रहे हम चेक करेंगे। तो उसने पूरी बोरी को उल्टा चेक किया पूरा, उसमें मिट्टी थी, उसने मिट्टी डाली अंदर, वो व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश चले गया। फिर एक दो दिन बाद ये व्यक्ति आया वही साइकिल पर, उसके पीछे क्या था, क्या है भाई आपके पास, मिट्टी, उसने चेक किया। तो ऐसे हर दो तीन दिन के बाद ये व्यक्ति आता था, कभी कभी रेगुलर आता था, एक साल दो साल तीन साल ये चलता रहा ऐसे ही। एक बार ये पुलिस वाला उस व्यक्ति को एक मार्केट में मिला, उसने बोला देखो मैं जानता हूं तुम स्मगलिंग कर रहे हो, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या स्मगलिंग कर रहे हो, मैं पागल हुआ जा रहा हूं, पर मुझे पता है तुम स्मगलिंग कर रहे हो, देखो मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा, मुझे बस इतना बता दो कि तुम क्या स्मगलिंग कर रहे हो। उसने कहा साइकिल। तो मन यही करता है हमारा, हमारा जिस चीज पे ध्यान होता ही नहीं है सारा ध्यान सारा उसी पे ही फोकस करके रखता है। बिल्कुल, जिस चीज को हम सोचते हैं कि इधर से तो मैं कभी गिरूंगा ही नहीं, वही गिरता व्यक्ति वहां पर, वो ध्यान ही नहीं होता उसका ना उसकी तरफ, वो बोरी चेक करने से क्या होगा। तो ये बहुत खतरा है, और सबसे बड़ा खतरा क्या है इस भौतिक संसार में, ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए लोग। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खुश देख ही नहीं सकता, है ना, दूसरे को खुश, दूसरे के दुख में जो आनंद आता है उसकी तुलना की नहीं जा सकती, है ना, उस व्यक्ति के लिए। दूसरे को दुखी देख के उसमें जो उसको जो आनंद की अनुभूति होती है, और वो जो हर पल पल बढ़ता आनंद उसका, जैसे जैसे सामने वाला व्यक्ति दुखी होता है। तो ये एनवी से भरा हुए लोग ये क्या करते हैं, हमें हमें भी ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, है ना। जिनके अंदर ईर्ष्या द्वेष होता है, जो एनिमी होते हैं, जैसे के अंदर बता रहे हैं, यहां बता रहे हैं, दस इवन वाइल परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस अ डिवोटी हैज टू क्रिएट मेनी एनिमीज। भक्ति करते समय भी व्यक्ति बहुत सारे दुश्मन बना लेता है अपने, और ये दुश्मन क्या करते हैं, उस व्यक्ति को भी नीचे खींचते हैं, उसको साइड ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, और वो व्यक्ति भी क्या है, वो साइड ट्रैक हो जाता है। उसको वो व्यक्ति ये सोचता है यार भक्ति तब मैं ठीक से कर पाऊंगा, पहले से बदला ले लूं, जब तक ये व्यक्ति रहेगा सामने वाला मैं भी भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या अपने भक्ति का सारा अटेंशन छोड़कर पहले उससे बदले लेने में निकल जाता है। इसलिए सोलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि नहले पे दहला मारना बहुत खतरनाक है। हमारा सारा निशाना यही होता है, नहले पे दहला, ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं, पर ये बहुत खतरनाक है। इससे क्या है, हम अपनी भक्ति चौपट कर रहे हैं, उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं हो रहा, वो तो ऐसा ही है ना, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारी भक्ति में फर्क पड़ता है इससे। और इसके ये जो श्रीमद् भागवतम, इसके कई उदाहरण हैं, जैसे चित्रकेतु महाराज थे, चित्रकेतु महाराज की कई पत्नियां थी, और वो सारी पत्नियां आपस में मिलकर रहती थी, उनके बीच में कभी लड़ाइयां नहीं होती थी। पर क्या है, एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति हुई, तो पुत्र की प्राप्ति होने से क्या हुआ, बाकी सारी पत्नियां उसे द्वेष करने लगी, दुश्मन बन गई। जो फ्रेंड्स थी आपस में, दोस्त थी, मिलकर साथ में रहती थी, पति की सेवा करती थी, पति का दुख शेयर करती थी, एक दूसरे को एंकरेज करती थी भक्ति में, वो क्या है, क्योंकि एक को ज्यादा यश मिलने लगा तो उसे ईर्ष्या द्वेष करने लगी, और क्या किया, उस बच्चे को मार दिया, एनिमी, दुश्मन, है ना। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब बाबा जी इसका खंडन वो विरोध करते थे, तो बाबा जी लोग इतने खुंदस में थे कि उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को मारने के लिए कई लोगों इकट्ठा किया, उन्होंने कई इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं, इवन पुलिस वालों से भी मिलने की कोशिश की उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को मारने के लिए। हरिदास ठाकुर के चरित्र में देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से चांद काजी नवाब ना, किस प्रकार से हरिदास ठाकुर को मारना चाहते थे, पर अगर हरिदास ठाकुर बदला लेने में निकल जाते तो वो अपनी भक्ति थोड़ी कर पाते ना। जब आगे गए हरिदास ठाकुर तो गोपाल चक्रवर्ती वो दुष्ट एनवी था हरिदास ठाकुर को, वो एनवी करता था हरिदास ठाकुर से। उसके बाद और आगे गए जब हरिदास ठाकुर तो रामचंद्र खान उसने उस वैश्य को भेजा हरिदास ठाकुर को नीचे गिराने के लिए। तो भक्तों के कितने दुश्मन होते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद जब गए थे पाश्चात्य देशों में तो श्रील प्रभुपाद पे मारने के अटैक हुए, श्रील प्रभुपाद के ऊपर स्वयं नित्यानंद प्रभु जो भगवान है उन पे जगाई मदाई ने आक्रमण किया। तो अगर हम देखें तो भागवतम में कई ऐसे चरित्र हैं, जैसे शिवजी, दक्ष कितने कितना कितना गलत बोला दक्ष ने शिवजी के प्रति। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं दरअसल, जब वो इन चीजों में फंसते हैं दरअसल, तो हम खुद भी भक्ति से साइड ट्रैक होते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी हम साइड ट्रैक करते हैं सेवा से, खुद भी साइड ट्रैक होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज पे अत्याचार हुए, हरिदास ठाकुर पे अत्याचार हुए, हरिदास ठाकुर का यश उस समय इतना था कि रामचंद्र खान से ज्यादा फॉलोवर्स थे हरिदास ठाकुर के। अगर हरिदास ठाकुर चाहते तो वो भी लोगों को इकट्ठा कर लेते, युद्ध होता, लड़ाई होती, फिर पता लगता कौन जीतेगा। पर हरिदास ठाकुर ने क्या किया, टाइम वेस्ट नहीं किया चीजों में, रक्षति इति विश्वासो, कृष्ण रक्षा करेंगे तो फिर हम क्यों इतना स्ट्रेंथ दें इसमें। जो काम कृष्ण का है, जो ड्यूटीज कृष्ण की है, वो कृष्ण को करने दो, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो बीच में। प्रहलाद महाराज ने कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की कि हे भगवान कुछ तो तरस करो यार, कितने दिन हो गए उठा उठा के फेंक रहे, कितना मार रहे हैं, कुछ तो सोच लो, है ना। कुछ प्रार्थना नहीं की, है ना, सिर्फ स्मरण करते थे हर परिस्थिति में। तो दरअसल जब हम ये गलत काम करते हैं या एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो क्या है, नुकसान किसका करते हैं हम, उस व्यक्ति का नहीं, है ना, हम कृष्ण का नुकसान करते हैं, प्रभुपाद का नुकसान करते हैं, अपने गुरु का नुकसान करते हैं। जैसे एक बार एक गुरु मंदिर में आए थे, तो हमारे मंदिर में नहीं आए थे, एक गुरु थे वो मंदिर में आए थे, तो दो शिष्य उनके चरण दबा रहे थे, एक लेफ्ट और एक राइट। तो जो राइट साइड वाला भक्त था वो बहुत अच्छी तरीके से दबाने आते थे उसको, बहुत बढ़िया तरीके से चरण दबा रहा था, और लेफ्ट वाला इतना एक्सपर्ट नहीं था। लेफ्ट वाले ने सोचा कमाल है, गुरु इसकी प्रशंसा करेंगे, तो उसने क्या किया, एक पिन निकाली और गुरु के पैर में राइट साइड पर चुबा दी कि इसका नाम आएगा। तो इसने देखा यार, गुरु इसने पिन चुबा दी, मेरा मैं बदनाम होगा, तो उसने भी पिन ली, गुरु को चुबा दी, है ना। तो समझिए आप, तो सफर कौन कर रहा है अल्टीमेटली, एक दूसरे से वो बदला तो ले रहे हैं, सफर कौन कर रहा है, गुरु। किसको भोगना पड़ रहा है, गुरु को। रिएक्शंस किसको लग रहे हैं, गुरु को। अगर हम अपना पूरा, अगर भक्त लोग आपस में ईर्षा द्वेष छोड़कर अगर प्रचार करें सब मिलके, तो प्रचार करना कठिन थोड़ी है। हम प्रचार इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम एक दूसरे को करने नहीं देते। जब कोई बढ़ने लगता है उसको नीचे खींच लेते हैं, फिर कोई बढ़ने लगता है उसको नीचे खींच लेते हैं, हम इसलिए नहीं कर पा रहे प्रचार। तो ये जो ईर्षा द्वेष से भरा हुआ पूरा जगत, और खासकर जब हम देखते हैं ये एनिमी जब इतनी डिफिकल्टीज, दुश्मन हमारे इतनी डिफिकल्टीज लाते हैं जीवन में, तो एक प्रश्न हमेशा दिमाग में उठता है कि भाई चलो ठीक है हमारे लाइफ में आते हैं कोई बात नहीं, ये आचार्यों के जीवन में क्यों आती है डिफिकल्टीज, इनकी लाइफ में तो नहीं आनी चाहिए कम से कम, हमारी लाइफ में आ रही है। ठीक है, हम स्ट्रगलिंग है, हम साधना करने की कोशिश कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्ट आ रही है, नो प्रॉब्लम, समझ आता है बात को, कम से कम इनके जीवन में तो नहीं आनी चाहिए। तो दरअसल जब इनके जीवन में ये डिफिकल्टीज आती हैं, ये दुश्मन होते हैं, तो ये कुछ लेसन्स देने के लिए होते हैं। क्या, सबसे पहले भगवान इन्हें ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, इन आचार्यों को, प्रहलाद महाराज को, दक्ष को, शिवजी को, हरिदास ठाकुर को, श्रील प्रभुपाद को, इनको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमारा पाथ बहुत आसान होगा, कोई हार्डशिप्स नहीं होंगी, कोई कठिनाइयां नहीं है पाथ में, तो इतना मजा नहीं आएगा उसमें। जैसे नासा जब चांद पर गया था, कुछ लोग कहते हैं गया था, पर जब गया था चांद पर, तो कितना यश फैला था उनका कि वो चांद पर गए, चांद पर क्यों, कुछ कुछ अलग से, कुछ मेहनत वाला काम करके दिखाया उन्होंने, इसलिए उनकी इतनी प्रशंसा हुई। अगर वो यहां से पता लगता है कि दिल्ली से गुजरात गया कोई, तो थोड़ी इतनी प्रशंसा होती किसी की, पंजाबी बाग से माधीपुर गया तो थोड़ी प्रशंसा होती, इतना दूर गया व्यक्ति तो क्या उसकी प्रशंसा, कुछ हार्ड काम टफ करके दिखाया उसने। परीक्षाएं होती है, एग्जाम होता है, अगर क्लास में एक बच्चा है और वो फर्स्ट आया तो उसका क्या मतलब बनता है, एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आया उसका क्या मतलब बनता है। मुझे याद है ऐसे लगभग 2004 में एक भक्त मंदिर में नए नए जुड़े थे, तो वो अपनी क्लास में फर्स्ट आए थे, तीन बच्चे थे क्लास में, दो फेल थे, उनकी कंपार्टमेंट थी, तो वो क्लास में फर्स्ट थे, टॉपर थे। तो ऐसे टॉप करने का क्या फायदा, इसकी क्या सेंस बनती है, आप कोई मेहनत ही नहीं की, कोई हार्डशिप है ही नहीं इसमें कोई। तो भगवान क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करना चाहते हैं अपने भक्तों को, इसलिए ये चीजें करते हैं भगवान। शिव जी ने जब पिया विष, तो भगवान ने ग्लोरीफाई करने के लिए कि शिव जी का गुणगान हो इसलिए, इसलिए टफ टाइम आया उनकी लाइफ में। दूसरा क्या है, भगवान हमें सिखाना चाहते हैं, भगवान हमें सिखाना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जब मिजरीज आएंगी, दुख आएंगे, है, तो हमें कैसे एक्ट करना है, हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है उस मिजरीज के प्रति, बह नहीं जाना उसमें, किस प्रकार से एक्ट करना है, हमें कितना एक्सपर्ट बनना है, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें ट्रेन करने के लिए। कोई भी ट्रेनिंग का मतलब है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, किसी प्रकार की ट्रेनिंग है इसका मतलब क्या है, आपको पुरानी आदतें त्यागनी पड़ेंगी और कुछ नई अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ट्रेनिंग देने के लिए। तो सबसे पहला उन्हें ग्लोरीफाई करने के लिए, और सेकेंड हमें सिखाने के लिए, और थर्ड भगवान क्या चाहते हैं, रियल एसेंस निकल के आए, रिलेशन, रेसिप्रोकेशन कृष्ण के प्रति और भक्तों के प्रति। अब अगर हम प्रहलाद जैसे समुद्र मंथन की अगर हम कथा देखें तो समुद्र मंथन में किस प्रकार से जब जब देवी देवताओं ने भगवान का कहना मानकर जब वो मंथन किया तो किस प्रकार से आखिर में जो एसेंस था नेक्टर वो उन्हें प्राप्त हुआ। तो प्रहलाद महाराज के अगर इंसिडेंट से अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए प्रहलाद महाराज को पहली बार पहाड़ से फेंका होता और तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट हुए होते और हिरण्यकश्यप को मार दिया होता तो क्या हम प्रहलाद को ग्लोरीफाई कर पाते इन सब चीजों के लिए? सेकंड, क्या हम कोई टीचिंग्स ले पाते प्रहलाद महाराज के चरित्र से? नहीं। और थर्ड, क्या हम कोई रेसिप्रोकेशन देख पाते कृष्ण के बीच में, नरसिंह भगवान और प्रहलाद के बीच में, कि किस प्रकार से नरसिंह देव प्रहलाद को प्रेम करते हैं ना? किस प्रकार से इतने उग्र नरसिंह जिनके सामने उनकी पत्नी भी आने के लिए घबरा रही है प्रहलाद को देखकर शांत हो गए ना, अपनी गोद में बिठाकर उन्हें चाट रहे हैं, क्या हम ये रेसिप्रोकेशन देख पाते? नहीं देख पाते। तो ये जितने भी इंसिडेंट्स होती हैं इसके पीछे कोई स्पेसिफिक, जैसे इसी परपट में बताया गया कि अ डिवोटी शुड एक्सपर्टली मैनेज टू थिंक ऑलवेज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड सो दैट द रिएक्शंस ऑफ सफरिंग कैन नॉट टच हिम। कि एक भक्त के जीवन में यहां बता रहे हैं एक भक्त को एक्सपर्ट बनना पड़ेगा ताकि उसके लाइफ में जो सफरिंग आई है उसको टच ना कर पाए। यहां पर यह नहीं बताया गया कि भक्त की लाइफ में सफरिंग्स नहीं आएंगी। परीक्षित महाराज की लाइफ में भी सफरिंग आई, दुख आए, कितने दुख आए परीक्षित महाराज की लाइफ में है ना। उन्हें श्राप दिया गया, एक राजा को श्राप दिया गया, वो चाहते तो श्रृंगी की गर्दन कटवा देते उस समय, पूरे परिवार को मरवा देते कि मैं तो मर रहा हूं तेरे को मार तो जाऊं कम से कम जाते जाते, भाई अपना काम तो कर जाऊं तुझे तो मार जाऊं, राजाओं मेरे को श्राप दिया। पर उन्होंने कुछ एक्ट नहीं किया, जैसे उन्हें श्राप मिला वो तुरंत गए और उन्होंने भागवत कथा सुननी शुरू की, प्रारंभ की। तो बिगेस्ट मिस्ट्री, सबसे बड़ा दुख मृत्यु है ना, मृत्यु उनको आ रही थी, पूरा संसार मृत्यु से डरता रहता है, हाय मैं मर तो नहीं जाऊंगा, हाय मैं मर तो नहीं जाऊंगा, पूरा संसार मृत्यु से डरता रहता है। जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला तो उन्होंने इसका फायदा उठाया, एडवांटेज उठाया। क्या फायदा उठाया उसका? कि अधिकांश जब किसी की मृत्यु आने लगती है तो क्या वो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है ना, यही होता है कि मृत्यु के समय आखिरी समय में वो डिप्रेशन में चले जाता है। पर परीक्षित महाराज आखिरी समय में समाधि में चले गए, केवल भगवान की कथा सुनने मात्र से, भगवान का स्मरण करने मात्र से। और यही बताया गया भक्ति रसामृत सिंधु में, इहा यस्से हरिदासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्यते। कि एक भक्त एक्सपर्ट, यहां पर बताया गया कुशलेना, एक भक्त एक्सपर्ट किस प्रकार से होता है? कि बहुत एक्सपर्ट होता है किस चीज में? टोपियां पहनाने में नहीं, लोगों को फ्रॉड करने में नहीं, मेटीरियल किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं होता, टैलेंटेड में नहीं, ऐसा एक्सपर्ट नहीं होता कि अपना काम निकालने में बहुत चतुर है या दूसरों को बहुत आसान से बेवकूफ बना देता है। वो एक्सपर्ट होता है कृष्ण का स्मरण करने में ना? और कैसा स्मरण? इहा यस्से हरिदासे कर्मणा मनसा गिरा, थ्रू माइंड, थ्रू वर्ड्स एंड थ्रू बॉडी, मनसा वाचा कर्मणा, वो भगवान का स्मरण कर पाता है। श्री प्रभुपाद जब प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते थे, प्रभुपाद को पता लगा उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो प्रभुपाद ने क्या किया? दुखी हुए? नहीं, प्रभुपाद ही रिमेंबर्ड कृष्णा, यस्य हम अनुग्रहणामि हर्षे तद धनम श्रेया, ये भगवान की कृपा हुई है मुझ पे, दिस इज मर्सी ऑफ कृष्णा, इमीडिएटली ही रिमेंबर्ड कृष्णा है ना। अगर उसमें प्रभुपाद शोक मनाते भी, या अगर हम शोक मनाते भी हैं किसी चीज के लिए, तो शोक की क्या सेंस बनती है ना? अगर किसी की फैक्ट्री में आग लग गई तो शोक मनाना, आपका शोक कोई फायर ब्रिगेड तो है नहीं जो आपने शोक मनाया और फैक्ट्री की आग बुझ गई, ऐसा तो होना है नहीं ना? तो क्या है बेस्ट? क्या है? एक्सपर्ट बने कि कैसे इन सिचुएशंस में भी हम भगवान का स्मरण कर सके ना? अभी क्या है हमारी लाइफ में कोई भी प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है तो हम क्या है ब्लेम और क्रिटिसिज्म का सहारा लेते हैं ना? हम एक दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं, चीजों पे, व्यक्तियों पे, वस्तुओं पे डालने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह से, इस सर्कमस्टांसिस की वजह से हुई थी। पर भक्त क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल बनता है कि इसमें मेरी जिम्मेदारी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मेरी लाइफ में अगर कोई दुख आ रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है जो मुझे दुख दे रही है, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, मेरा कुछ ना कोई एक्ट ऐसा रहा होगा जिसके कारण मुझे मिल रही है ना? तत्ते अनुकंपा सुसमिक्षमानो भुंजान एवातम कृतम विपाकम हृदयभाग विपुर भीर विदधन निमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदया भाग। ऐसा ही व्यक्ति क्या जीता हुआ भी मुक्त होता है, ऐसा नहीं कि मरने के बाद, जीता हुआ भी वो व्यक्ति मुक्त होता है। क्यों? हर इंसिडेंट में क्या भगवान का स्मरण कर पाता है, दिस इज मर्सी ऑफ कृष्णा, दिस इज मर्सी ऑफ कृष्णा। खाली सुख आए तब मर्सी ऑफ कृष्णा नहीं, दुख आए वो भी भगवान की कृपा है ना? इसमें भगवान को कोई एक्ट है। अगर माता पिता आशीर्वाद दें तो वो तो आशीर्वाद है ही, पर माता पिता जब मारते हैं वो भी आशीर्वाद है। किस कारण से? क्योंकि आपको गलत काम करने से रोकते हैं। तो कृष्ण हमारी नीड्स के अकॉर्डिंगली हमें सब कुछ देते हैं। तो परीक्षित महाराज, श्रील प्रभुपाद और प्रहलाद महाराज, ये सब बहुत एक्सपर्ट हैं भगवान का स्मरण करने में। प्रहलाद महाराज ने हर स्थिति में, प्रहलाद महाराज की देखिए कोई सुनता नहीं था, है ना? प्रहलाद महाराज से कोई प्रेम नहीं करता था उनके राज्य में, पर फिर भी कभी प्रहलाद महाराज दुखी नहीं हुए। ऐसी कभी स्थिति नहीं आई कि प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण करना बंद कर दिया। और हिरण्यकश्यप को, जिसे हर कोई पूछता था, हर कोई बात सुनता था, और राक्षसों में हर कोई उन्हें प्रेम करता था, पर उनको कभी इस बात का दुख नहीं था। कोई इनको दुख नहीं था इस चीज का, जो हिरण्यकश्यप थे उनको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर क्या है? एक छोटा सा बच्चा, वो उनकी बात नहीं मानता था, इस कारण से बहुत दुखी थे। और इस भौतिक संसार का स्वभाव भी ऐसा है कि एक तो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता अपनी चीज से, और दूसरा कि जो हमें चाहिए हमेशा उल्टा ही मिलता है उसका। ये भौतिक संसार का स्वभाव ही ऐसा है। और जहां तक व्यक्ति के यश और अपयश का, क्योंकि अभी हम यश अपयश में ऐसे फंसते हैं कि हमें लगता है कोई तो सम्मान करे, है ना? कम से कम मेरा बच्चा तो मुझे पूछे, है ना? बच्चे को लगता है कम से कम माता पिता तो मुझे पूछे, है ना? सास ये सोचते कि चलो बेटा नहीं पूछता था, बहू नहीं नहीं आई, ये तो कम से कम पूछे, है ना? पर कहां कोई पूछता है। और आप सोचिए, एक बार अगर बेसिक कैलकुलेट कीजिए दिमाग में, पूरे वर्ल्ड की, अभी 14 प्लैनेटरी सिस्टम की पॉपुलेशन में पता नहीं, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़ है, और भारत की 120 करोड़, दिल्ली की लगभग 2 करोड़, और अगर पंजाबी बाग के लिए तो 50-70 हजार के करीब लगभग, है ना? और अगर आप मंदिर में आने वाले या अपने जिनको आप जानते हैं नॉन्स को, लगभग 100-125, 150, 200, है ना? अब आप सोचिए कि हम 100-125, 150 लोगों को जानते हैं, तो ऑलरेडी 799,99,900 लोग तो हमें वैसे ही सम्मान नहीं दे रहे। आप सोच रहे हैं इस बात को ना? इतने लोग तो हमें वैसे सम्मान दे ही नहीं रहे, वो जो 100 लोग नहीं दे रहे उसके पीछे दुखी हो रहे हो, बाप पागल। या तो आपको 799,99,900 लोग आपको सम्मान दे रहे हो, 100 नहीं दे रहे तो चलो समझ आता है, इतने दे रहे हैं इनको भी देना चाहिए। अरे इतने तो आपको पहले नहीं दे रहे, वो 100 लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति आपकी बात मानने के लिए ऊपर नीचे कहीं हो गया वहां पर, तो इसलिए आप दुखी हो जाते हो। तो ये कोई परिभाषा नहीं है, ये हमारी भक्ति की कोई परिभाषा नहीं है। और व्यक्ति क्या करता है, अपना पूरा जीवन इसी चीज में ही लगा देता है ना? पूरा जीवन व्यक्ति का इन द्वंद्वों में ही फंसा होता है ना? कि उसको कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं ना? भगवत गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया गया, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योन्या एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। ये जो प्रॉब्लम्स है ये आएंगी, ये सिचुएशंस आएंगी, हर प्रकार की सिचुएशन आएगी, पर नातेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों में रमता नहीं है। रमता का मतलब क्या है? एंजॉय करना, रिलिश करना। अभी क्या करते हैं? दुख को रिलिश करते हैं, मजा आता दुख आता। तो अगर आपको किसी में मजा नहीं आएगा तो आप क्यों करोगे, है ना? एक ऊंट जब कटीली झाड़ी खाता है तो उसको मजा आता है, तभी तो खाता है, चाहे उसको खून निकलता है उसको मजा आता है। तो हम क्या, दरअसल हम दुख को रिलिश करते हैं, हम मूर्ख हैं भगवत गीता के अनुसार। ना तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति रमता नहीं है, इसको रिलिश नहीं करता, है ना? पर आजकल का बद जीव इसको रमता है, इंजॉय करता है। जब व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स में फंसता है, काम वास्तव में फंसता है, तो अपना खून बहाता है, है ना? और खून बहाने के बाद उसको लगता है, सीमन ब्लड है हमारा, खून बहाने के बाद उसको लगता है कि क्या इंजॉय किया मैंने, क्या इंजॉय किया, आपका खून निकल गया, आपको इंजॉय किया आपने। जब चटी चटपटी चीजें खाता है उसकी जीभ जलती है, करता है, उसको लगता है मैं इंजॉय करूं, सफर कर रहा होता वो व्यक्ति। पर क्या है, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है, सफरिंग को हम इंजॉयमेंट मान बैठे हैं। पर क्या है, ना तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति रमता नहीं है इसमें। और हमें क्या करना है, बुद्धिमान के लेवल पर आना है, एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट किस चीज में बनना है? हर सर्कमस्टांस में, हर स्थिति में कृष्ण का स्मरण कर सके, इस चीज में हमें एक्सपर्ट बनना है। आप अगर एक बार सोच के देखिए, ब्रजवासी कितने एक्सपर्ट थे भगवान का स्मरण करने में। ब्रज में एक व्यक्ति, छोटा सा बच्चा काले रंग का, कृष्ण, उसके कारण ब्रज में बार बार राक्षस आ रहे हैं, सारी प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा भी तो हो सकता था कि ब्रजवासी सारे मीटिंग करते, यार इस व्यक्ति बच्चे की वजह से दिक्कत आ रही है, ना हमें राजा चाहिए ना हमें बच्चा चाहिए, इनको बाहर निकालो। पर उन्होंने क्या किया, जब महावन गोकुल में रहते थे, कृष्ण को प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी जगह पर रहने का फायदा ही क्या। हमने सुना है कि वृंदावन बहुत सुरक्षित जगह है, वृंदावन जाके रहेंगे हम लोग, पूरा गांव है ना, कृष्ण के 100,000 काउ हर्ड बॉयज है, ग्वाल बाल जो गाय चराने के लिए जाते हैं, 100,000 1,00,000 ग्वाल बाल कृष्ण के साथ गाय चराने के लिए जाते हैं रोज। इतने ग्वाल बाल है, सिर्फ बच्चे, बड़ों की बात नहीं हुई, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ना? आप सोचिए कितनी गोपियां होंगी, कितने बड़े ग्वाल बाल होंगे, और हर बच्चा कम से कम 8-10 लाख गाय तो चराता ही था, तो गाय कितनी होंगी। एक बच्चे के लिए पैकअप बताया, उन्होंने पूरा अपना घर पैक कर दिया बुलेट कार्ट्स में, पूरा घर रख के निकल पड़े है ना, छट्टीगढ़ तक पहुंचे रात को, और रात को क्या किया, कृष्ण के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी मार्केट लग गई पूरी वहां पर, और रिलिश कर रहे हैं सब लोग, आनंद में है बिल्कुल। और फिर जब गोकुल से वृंदावन पहुंचे वहां पर, तो फिर एक बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ दिया है ना, जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई, गोपियों ने अपना पूरा परिवार सब कुछ छोड़ दिया, सारे संबंधी छोड़ दिए, जो इज्जत है ना वुमेन्स के लिए, जो चरित्र, अपना चरित्र छोड़ दिया ना? जब कृष्ण अक्रूर लेके जा रहे थे कृष्ण को जब वृंदावन से बाहर, तो गोपियों ने कभी भी अपने बड़ों के सामने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया था, हमेशा छुप के जाती थी, पर उनसे रहा नहीं किया है ना, गोविंद दामोदर माधवेती बोलते हुए कृष्ण के पीछे भाग पड़ी, सब कुछ छोड़ दिया ना? जब ग्वाल बालों को पता लगा कि कृष्ण जा रहे हैं है ना सैक्रिफिशियल एरिना में यज्ञ के लिए, तो ग्वाल बालों ने बोला हम यहां पर रह के क्या करेंगे, सारे ग्वाल बाल चले गए कृष्ण के साथ, सारे ग्वाल बाल। तो ये लव है। और जब कृष्ण वृंदावन नहीं आए वापस, तो पूरा वृंदावन डेड हो गया है ना, जीते हुए भी अचेतन, कोई चेतना नहीं थी। दिस इज लव, दिस इज रिमेम्बरेंस। पर हमारा क्या है, जो दुख है उसको हम सुख मान बैठे हैं, जो सुख है हम उसको दुख मान बैठे हैं, सारी चीजें बिल्कुल विपरीत चल रही है, बिल्कुल विपरीत। पर हमें एक्सपर्ट बनना है भगवान का स्मरण करने में, भगवान के नाम का जप करने में, भगवान का श्रवण करने में, इन चीजों में एक्सपर्ट बनना है हमें, प्रचार करने में एक्सपर्ट बनना है, और प्रचार करने के साथ साथ अपने श्रवण कीर्तन में बहुत, कभी कभी हम प्रचार में इतना लीन हो जाते हैं कि अपना श्रवण कीर्तन त्याग देते हैं, तो ये बहुत जरूरी है अपना श्रवण कीर्तन। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते जाते गाड़ी को थोड़े थोड़े समय बाद गैरेज पे भेजना जरूरी होता है, अगर आप गैरेज पे नहीं भेजेंगे गाड़ी को तो गाड़ी खराब हो जाएगी है ना। एक डस्टबिन अगर आप यूज कर रहे हैं, उस पर लिखा होता है यूज मी, भक्ति वैसे होते हैं यूज मी, हर कोई आता है डंप करता रहता है अपना गार्बेज डालता रहता भक्तों पे, तो भक्त कब तक उसको बर्दाश्त करेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, उस गार्बेज को खाली करना पड़ेगा, नहीं तो उनमें से बदबू आएगी, फिर खाली करना पड़ेगा, अपना श्रवण कीर्तन है ना स्ट्रांग करना पड़ेगा हर स्थिति में। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तम्य न जातचित सर्व विधि निषेधासुर एतयोर एव किंकरा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एतयोर एव किंकरा, इसके सर्वेंट हैं। क्या स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातचित, कि भगवान का स्मरण करना हर स्थिति में। और स्मरण किसका करते हैं हम, स्मरण हमेशा उसी व्यक्ति को किया जाता है जिससे कोई संबंध हो हमारा, कोई रिलेशन हो, तो भगवान से रिलेशन एस्टैब्लिश करना, इस चीज में एक्सपर्ट बनना है, भगवान के श्रवण कीर्तन में, भगवान के स्मरण में, इसमें हमें एक्सपर्ट बनना है, भगवान की सर्विस में एक्सपर्ट बनना है हमें। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णा अनुशीलन भक्ति उत्तम है ना, अनुशीलन करना, वर्किंग फॉर कृष्णा है ना, कृष्ण के लिए कार्य करना है, कृष्ण की सेवा करनी है, इस चीज में हमें एक्सपर्ट बनना है। तो क्या है दरअसल एक्सपर्ट की डेफिनेशन क्या है, मनसा वाचा और कर्मणा थ्रू बॉडी माइंड एंड सेंसेस वी हैव टू रिमेंबर कृष्णा, वी हैव टू सर्व कृष्णा, कृष्ण का रिमेंबर, कृष्ण को रिमेंबर करना है, कृष्ण की सेवा करनी है हमें, और यही दरअसल में रियल एक्सपर्टिस है। और अगर हम इस चीज में अगर हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो क्या देखेंगे हम, बाकी सारी जिस चीज में हमारे को नीड है वो अपने आप फुलफिल होती रहती है, अपने आप, हमें किसी भी चीज के लिए कोई सेपरेट और अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से मेहनत, जैसे जो हारमोनियम प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं काफी समय से, पर जो हारमोनियम प्रैक्टिस करते हैं, तो हारमोनियम में क्या होता है, सारे गामा पाधा निसा, तो जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस है वो क्या करते हैं, सा प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ सा, क्योंकि अगर सा आपका ठीक सा लगा तो रे गा मा पा अपने आप आने लगेगा, है ना। तो ये अपने आप आते हैं। उसके बाद अगर आपका सा ठीक नहीं है तो आप रे गा मा पा धा नी सा कुछ भी नहीं गा पाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर हमारी भक्ति, अगर हमारा श्रवण कीर्तन ठीक नहीं है तो आपकी कोई भी चीज, अगर हमारा स्मरण ठीक नहीं है तो कोई भी चीज ठीक से नहीं चल पाएगी। तो भक्तों को क्या करना है, एक्सपर्ट बनना है हियरिंग चैंटिंग में, एक्सपर्ट बनना है भगवान की सर्विसेज में। और जब हम एक्सपर्ट बनेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हो सकता है कभी कभी अपेरेंट रूप से हमें लगे कि हमें कहीं हार भी मिल रही है, पर फिर भी हम क्या है, हमेशा अपने आप को सक्सेसफुल फील करेंगे ना? क्योंकि कृष्ण का स्मरण होना, रिमेंबरिंग कृष्णा, ये विजय की निशानी है, जीत की निशानी है। जैसे वृतासुर जब इंद्र से लड़ रहा था तो इंद्र ने जब अपना गदा मारा तो इंद्र, वृतासुर ने क्या किया, उस गदा को पकड़ा अपने लेफ्ट हैंड से और इंद्र के अरावत हाथी पर मारा दोबारा, और इंद्र नीचे गिर गया। अब इंद्र के हाथ में वो थंडर बोल्ट है ना, वो वज्र है जिससे वृतासुर की का वध होगा। और किसकी इंस्ट्रक्शन थी ये, विष्णु की। विष्णु ने बोला था दधीचि मुनि की हड्डी से बने हुए वज्र से वृतासुर का वध होगा, पर इंद्र को विश्वास ही नहीं था इससे वध हो पाएगा। तो वृतासुर ने क्या किया, इंद्र का उत्साह बढ़ाया कि घबराओ मत आप, यू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में एक्सपर्ट बनो आप, है ना, निश्चित रूप से आपकी विजय होगी और आप स्वर्ग का राज्य करोगे और मैं मरने के बाद भगवान के धाम जाऊंगा। श्री प्रभुपाद ने भी यही किया, चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन किया ना? जो उनके गुरु के थ्रू उनके पास आए थे, पाश्चात्य देशों में जाओ और प्रचार करो। तो हमें भी अपना, क्योंकि इस भौतिक संसार में, जैसे यहाँ पर बताया गया कि भौतिक संसार की हर स्थिति, हर ड्यूअलिटी और हमारा मन हमें हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश करता है, नीचे खींचने की कोशिश करता है, पर हमें क्या है, इसी में ना फंस कर हमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी है कृष्ण का स्मरण करने में। और खाली गुड सिचुएशंस में नहीं, कोई विपरीत स्थिति आए उसमें भी, क्योंकि विपरीत स्थिति में भगवान का स्मरण करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान, क्योंकि विपरीत स्थिति में हमारे आसपास कोई होता ही नहीं है, हेल्पलेस। कहावत कहते हैं फिल्मों का डायलॉग समझ लीजिए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई है ही नहीं आसपास, तो हमारे पास सिर्फ एक ही सिचुएशन बचती है, सरेंडरिंग टू कृष्णा, भगवान को शरणागत करना। तो विपरीत स्थितियों में सिचुएशंस बहुत फेवरेबल होती है, हमें सिर्फ एक्सपर्ट बनना है कि उन सिचुएशंस में हम कृष्ण का स्मरण कर पाए। अगर हमने उन सिचुएशन से कृष्ण का स्मरण करना सीख लिया तो हमें कृष्ण की प्रेजेंस को देख पाएंगे हमारी हर लाइफ में, है ना, हमारे हर इंसिडेंट में, कि कैसे कृष्ण हमारे पे नियमित रूप से कृपा कर रहे हैं और हमारी पूरी गाड़ी कृष्ण की कृपा पर चल रही है। तो ये श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, इस चीज में एक्सपर्ट बनना। मैं लास्ट चीज बताऊंगा, हिसुलनेस राधानाथ स्वामी महाराज फेथ की डेफिनेशन बताते हैं, टू द डिग्री वी थिंक, जितनी मात्रा, मैं पहले इंग्लिश में बताता हूं, टू द डिग्री वी थिंक आई एम द डूअर ऑफ माई एक्टिविटीज, टू दैट डिग्री वी वॉन्ट टू टेक क्रेडिट ऑफ आर एक्शंस, वी कैनॉट हैव ट्रू फेथ इन द लॉर्ड। जितनी जितनी मात्रा में हमें लगता है कि मैं डूअर हूं, करता हूं अपने एक्शंस का, अपनी एक्टिविटीज का, उतनी उतनी मात्रा में हम क्या क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, कुछ लेने की कोशिश करते हैं, ये मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी वजह से हुआ है, और उतनी उतनी मात्रा में क्या है, हम भगवान पे कभी श्रद्धा नहीं रख पाएंगे। तो क्या है कि अगर हम कृष्ण का स्मरण करते हैं और जब भगवान की मर्सी को, कृपा को देख पाएंगे साक्षात, तो फिर हमें लगेगा कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है ये भगवान की कृपा से है, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है इसमें। तो प्रहलाद महाराज ने यहां पर अपने जीवन से, प्रहलाद महाराज ने यहां पर यह सिखाया है कि हर सिचुएशन में उन्होंने नरसिंह देव का, कृष्ण का स्मरण किया, और किस प्रकार से नरसिंह देव यहां पर उन्हें वरदान दे रहे हैं जीवन मुक्त, नरसिंह देव उनको वरदान दे रहे हैं कि आप इस लाइफ को, समय के अनुसार आप इस अपने शरीर को त्यागने के बाद मेरे धाम को प्राप्त होगे और आपकी यश कीर्ति इस भौतिक संसार में ही फैलेगी और क्या है, अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स में भी फैलेगी। तो हमें क्या करना है, हमें इन चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमारी जो रियल ड्यूटी है कि हमें, हम कृष्ण का स्मरण कर सके, हमें अपना पूरा फोकस, पूरा अटेंशन उसी पर रखना चाहिए और कुछ लेना, इसी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहिए। तो मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आज दो आचार्यों का तिरुभाव दिवस है, श्रील महेश पंडित और श्रील उदाहरण दास दत्त पंडित। मैं चैतन्य चरितमृत से दोनों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। महेश पंडित का गांव पालपाड़ा नदिया जिले में चाकदह रेलवे स्टेशन से लगभग 1 मील दक्षिण जंगल के भीतर स्थित है। पास ही गंगा नदी बहती है। कहा जाता है कि पहले महेश पंडित जिराट के पूर्व में मसीपुर या यशीपुर नामक गांव में रहते थे, और जब मसीपुर गंगा नदी के तट में डूब गया तो वहां के विग्रहों को पालपाड़ा गांव लाया गया, जो बेलेडांग, बेलीग्राम, सुरसागर, चांडुंगे तथा मानसोपात नामक गांव के बीच बसा हुआ था। कहा जाता है कि महेश पंडित पानी हाथी में नित्यानंद प्रभु द्वारा संपन्न समारोह में सम्मिलित हुए थे। इस समारोह में नरोत्तम दास ठाकुर भी सम्मिलित हुए थे और महेश पंडित ने इस अवसर पर उन्हें देखा था। महेश पंडित के मंदिर में गौर नित्यानंद, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, राधा गोविंद के विग्रह के साथ शालिग्राम शिला भी है। ब्रज लीला में महेश पंडित महाबाहु नामक सखा हैं, जो कृष्ण बलराम की सेवा करते हैं और इनकी समाधि 64 समाधि एरिया में है। श्री महेश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। दरअसल इसमें थोड़ा ज्यादा लेंथी है तो मैं आपको समाधि पुस्तक से पढ़ के बताऊंगा। श्री उदाहरण दत्त ठाकुर, उदाहरण दत्त ठाकुर अद्वादश गोपाल लिव्ड इन सप्तग्राम। उदाहरण दत्त ठाकुर थे, ये द्वादश गोपाल में से एक थे और सप्तग्राम में रहते थे, और जो इनका जन्म था बहुत ही धनवान परिवार में हुआ था और इनका पूरा परिवार सोने का धंधा करता था, और बाद में ही लेटर मैरिड एंड वर्क्ड एज अ वेल्थी स्टेट मिनिस्टर। उसके बाद इन्होंने विवाह किया और एक स्टेट मिनिस्टर की तरह इन्होंने कार्य करना शुरू किया। द प्लेस वेयर ही वंस हेड ऑफिस इज टुडे कॉल्ड उदाहरणपुर इन हिज ऑनर। और जिस स्थान पर उदाहरण दत्त ठाकुर रहते थे इस वक्त उनकी कीर्ति का गुणगान करने के लिए उस स्थान का नाम उदाहरणपुर रखा गया है। लॉर्ड नित्यानंद प्रभु वुड ऑफन स्टे इन हिज होम एंड एक्सेप्ट फूड फ्रॉम हिज हैंड। नित्यानंद अधिकांश इनके घर में रहा करते थे और उनके हाथों से भोजन पाया करते थे। परफॉर्मिंग प्रेम नाम संकीर्तन इन सप्तग्राम, लॉर्ड नित्यानंद डिलीवर्ड द एंटायर कम्युनिटी ऑफ बैंकर्स एंड गोल्ड मर्चेंट्स। तो इस सप्तग्राम में रहते हुए और प्रेम नाम संकीर्तन का प्रचार करते हुए नित्यानंद प्रभु ने पूरी कम्युनिटी का, जो बैंकर्स, वणिक और जो सोने का धंधा करने वाले थे, उनका उद्धार किया। उदाहरण दत्त सेड दैट सप्तग्राम इज सच अ होली प्लेस दैट सिंपली बाय सीइंग इट वन इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस। उदाहरण दत्त कहते थे कि सप्तग्राम एक ऐसा स्थान है, केवल उसके दर्शन करने मात्र से हम सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। व्हेन ही वाज 26 इयर्स ओल्ड हिज वाइफ सडनली डाइड। जब वो 26 साल के थे उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। He left everything to associate with Sri Nityan Prabhu and preach the glories of Krishna's holy name. और उन्होंने क्या किया, अपना सब कुछ त्यागा और नित्यान प्रभु के साथ हरिनाम के प्रचार में जुट गए। He personally installed and worshipped deities of षटभुज महाप्रभु। उन्होंने षटभुज महाप्रभु के विग्रह की स्थापना की, नित्यान प्रभु के, गदाधर पंडित के विग्रह की स्थापना की। He serves Lord Balram as Subahu Sakha in Braj Leela. और ये बलराम जी की सेवा करते हैं सुबाहु सखा के रूप में ब्रज लीला में। His समाधि इज इन 64 समाधि एरिया और इनकी समाधि भी 64 समाधि एरिया में है। श्रील उदाहरण दत्त ठाकुर की। श्रील उदाहरण दत्त ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। गौर प्रेमानंद।